हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण। तो आप सब भाग्यशाली हैं कि आज बलराम पूर्णिमा भगवान श्री बलभद्र भगवान श्री कृष्ण के अग्रज, अग्रज का मतलब भगवान श्री कृष्ण से पहले जिनका प्रकट्य हुआ, उनके पावन आविर्भाव तिथि बलराम पूर्णिमा और कृष्ण बलराम मंदिर बना के इस्कान में प्रातः श्रीमद् भागवत में बलराम की महिमा सुनने के लिए पधारे हैं, आपका स्वागत है। कल हम श्रीमद् भागवत से पढ़ रहे थे श्री कृष्ण जन्म के विषय में। अध्याय का नाम तो श्री कृष्ण जन्म है, लेकिन उसमें बलराम जी का वर्णन है, वो हम कल पढ़ रहे थे। कथा शुरू करने के लिए ऐसे कहना पड़ेगा कि भगवान श्री कृष्ण को अवतार के लिए पृथ्वी देवी आतिताई राजाओं को अपने ऊपर राजाओं का भार नहीं सह पा रही थी। चारों ओर से मिलिट्री आर्मी असुरी प्रकृति के राजाओं की पृथ्वी के ऊपर भार हो गई और पृथ्वी अपनी कंप्लेन लेकर ब्रह्मा जी के पास गई। तब एक विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद ने एक अच्छा वर्णन लिखा है कि ये श्वेत दीप वाले ब्रह्मा के पास नहीं गई। एक तो ब्रह्मा जो है ना, एक नहीं, जो ब्रह्मा सत्य लोक में रहते हैं वहां पृथ्वी उस ब्रह्मा के पास नहीं गई। पृथ्वी गई ब्रह्मा जी के पास जो यहां लिखा है कि पृथ्वी कौन से ब्रह्मा जी के पास गई और सत्य लोक वाले ब्रह्मा के पास नहीं गई, उसका कारण लिखा है। सत्य लोक में रहने वाले ब्रह्मा जी के पास नहीं गई, उसका क्या कारण है? बोला ऐसा वर्णन आता है कि रेवत महाराज के बेटे कुक्षी अपनी बेटी रेवती को लेकर ब्रह्मलोक में गए थे ये पूछने के लिए कि इसका विवाह किससे करें। और इतने बीच में त्रेता युग बीत गया, सतयुग की बात है, और द्वापर युग का अंत आ गया। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि आप अपनी बेटी रेवती का विवाह, इस वक्त बलराम का अवतार हुआ है और वो द्वारका में है, उससे करो। तो जब पृथ्वी अवतार के लिए प्रार्थना करने ब्रह्मा के पास गई तो उस ब्रह्मा के पास तो नहीं गई, क्योंकि वहां तो उस वक्त रेवत राजा का बेटा उससे प्रार्थना कर रहा था और उस वक्त तक तो कृष्ण का और बलराम जी का जन्म हो भी गया था और वृंदावन लीला और मथुरा लीला भी समाप्त हो गई थी और कृष्ण बलराम उस वक्त द्वारका में थे। तो कहां गई थी पृथ्वी? तो दूसरे ब्रह्मा जी, जैसे श्वेत दीप में भगवान क्षीर सागर में रहते हैं उसके पास ब्रह्मा जी जाते हैं, तो ये ब्रह्मा जी जिसके पास पृथ्वी गई थी यहाँ लिखा है लॉर्ड ब्रह्मा। कथा शुरू होती है। भूमि द्रप नृप व्याज दैत्यानिका, तो दैत्यों के भार से भूमि वहां से ब्रह्मा जी के पास गई, ब्रह्मा जी के शरण गई। सत्यलोक में ब्रह्मा रहती है उसके पास। दिस वॉज नॉट दी ब्रह्मा हु यूजुअली स्टेज ऑन सत्यलोक। इन दी सत्य युग बिफोर दी अपियरेंस ऑफ कृष्णा किंग रेवत वेंट टू दी ब्रह्मा ऑन सत्यलोक अलॉन्ग विथ हिज डॉटर रेवती to ask about his daughter's marriage in Brahma's assembly, Gandharva, Haha and Huhu were singing during the length of their one song on Satyaloka, Brahmaloka. Satya and Treta Yuga on the earth finished and the Dwapur Yuga also passed and Krishna and Balaram are about to appear. Brahma said, so where Bhumi went then? So there Brahma said, please give your daughter in the marriage to Balaram who has now appeared on the earth planet. He is the suitable groom. Thus situated on Satyalok, Hiranyagarbha Brahma was listening to the song while Satya and Treta and Dwapur Yuga passed on the earth planet until the Krishna and Balaram's appearance. The deity of earth could not have approached that Brahma on Satyalok to make a request. Bhumi, earth personified, went instead to the Vairaj Brahma. This Vairaj Brahma living on the Mount Meru, the great sage Parasar Muni confirmed this. Jagam dharanye meru samaje trai devakasam. The goddess of the earth went along with the demigods to Mount Meru. So, ye Brahma ji, jiske paas prithvi gayi thi, ye Brahma ji Meru parvat ke upar rehte hain. और कभी हम सुनेंगे कि जो ब्रह्मा हमारी संप्रदाय का प्रवर्तक है, जिस ब्रह्म संप्रदाय में है, वो ब्रह्मा भी साधारण सत्यलोक वाला ब्रह्मा ऐसे नहीं है। वो तो दिव्य ब्रह्मा भगवान से ज्ञान प्राप्त करने वाला है। तो ब्रह्माओं में भी भेद है एक ही युग में, यहां ये एक संकेत मिलता है। तो अब पृथ्वी ब्रह्मा जी ने वहां प्रार्थना की और भगवान ने क्या कहा। भगवान ने कहा कि मैं तो अवतार लूंगा लेकिन अपने सारी शक्तियों के साथ आप जाके देवताओं के वहां जन्म लो। अब इसके बाद की कथा कल हमने पढ़ी कि वासुदेव की विवाह हुआ। वसुदेव की माता वसुदेव सूरसेन का बेटा, वसुदेव की माता ने वसुदेव को कहा था बचपन में, बेटा तुम्हारे जन्म के समय आकाश में दुमदुमियां बजी थी, देवताओं ने अपने सुंदर वाद्य बजाए थे, आनक ढोल दुमदुबी, और ये घोषणा हुई थी कि ये जो बालक है ये आगे चलकर भगवान के पिता का सौभाग्य प्राप्त करेगा, ये भाग्यशाली बालक है। इसलिए भागवत में वसुदेव का एक नाम है अनंक दुमदुभी। इसका और वसुदेव को ये मालूम था कि वो सौभाग्यशाली है, देवताओं ने घोषणा की है आगे चल के भगवान उनके घर में पुत्र रूप में प्रकट होंगे। और वसुदेव ने ये बात विवाह के समय देवकी को बताई। इसलिए कंस जब देवकी और वसुदेव के रथ का उल्टे हाथ से रीन्स या लगाम और सीधे हाथ में आत तो तरे चाबुक या विप लेके जा रहा था, तो जो देवताओं ने आकाशवाणी की कि इसका आठवां गर्भ आपका मृत्यु है, तो देवकी बहुत प्रसन्न हुई कि मेरे यहां भगवान अवतार लेंगे, क्योंकि जो वसुदेव ने कहा है कि देवताओं ने अपने जो भी इंस्ट्रूमेंट हैं बजाए थे खुशी में देवता वसुदेव के जन्म के समय, अब ये देवता ये कह रहे हैं कि मेरे यहाँ आठवें गर्भ में भगवान प्रकट होंगे, ये देवकी को उस बात का विश्वास हुआ कि भगवान आएंगे। और देवताओं ने ये क्यों घोषणा की, यहां लिखा है कि शब्द कहीं से आने लगा आकाश से, क्यों देवताओं ने ये कहा, ऐसे कहने की देवताओं को जरूरत क्या थी। देवताओं ने देखा कि कंस इस तरीके से वसुदेव और देवकी की सेवा करेगा तो फिर भगवान को कंस को मारने में संकोच होगा, ही विल बी रियली लिटिल हेजिटेंट टू किल, तो इसलिए देवकी और वसुदेव को देखना चाहिए कि कंस कितना क्रूर है। हाउ डिमोनिक ही इज, लेट देम सी। तो लोग तब तक मीठा बोलते हैं, सब साथ देने की बात करते हैं जब तक उनके भोग के ऊपर कोई आक्रमण नहीं करता है। जब कंस को पता लगा कि इसका गर्भ मुझे मारेगा तो जो उल्टे हाथ में लगाम था घोड़े का वो भी छोड़ दिया, और जो हाथ में चाबुक था वो भी छोड़ दिया, लगाम की जगह देवकी के बाल पकड़ लिए और चाबुक की जगह तलवार निकाल ली और देवकी को मारने के लिए तैयार हो गया। तो एकदम आदमी का पता तब लगता है कि ये कैसा है जब उसका जो कामना है, उसकी जो लोभ है, उसको कोई रुकावट डालता है। वैसे कहावत है संतों की भाषा में, कामी और लोभी पुरुष के रास्ते में रुकावट बनोगे तो वो मार देगा आपको, अथवा उसके मारने के वो मारने के लिए तैयार हो जाएगा। सामान्य ऐसे लगता नहीं। तब वसुदेव ने साम दान दंड भेद के द्वारा कंस को समझाना चाहा, लॉजिक के द्वारा समझाना चाहा, नहीं समझा। तो वसुदेव ने कहा जब मृत्यु निकट हो तो मृत्यु से बचने के लिए जब तक शरीर में शक्ति हो और बुद्धि काम करती हो उससे बचना चाहिए। तो मृत्यु से बचने के लिए पूरा प्रयास करना चाहिए। तो इस वक्त देवकी की रक्षा करना मेरा धर्म है, ये मेरी पत्नी है। रात हम जहां सत्संग कर रहे थे हमको याद आया पांचवें स्कंद श्रीमद् भागवत में लिखा है श्री रामचंद्र के मिशन स्टेटमेंट के विषय में कि उनका उद्देश्य प्रचार का विशेष क्या था। किम पुरुष लोक में हनुमान जी आज भी राम जी की उपासना करते हैं, वहां लिखा है राम जी का जीवन का उद्देश्य था कि एक बार पत्नी को ग्रहण किया जाए, स्त्री को पत्नी के रूप में हाथ पकड़ के ग्रहण किया जाए तो उसकी रक्षा करने के लिए सात समुद्र पार जाना पड़े, रावण से लड़ना पड़े तो भी वो करना चाहिए और स्त्री की रक्षा करनी चाहिए पत्नी की। ये राम जी का एक महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है। और उससे पहले ऐसे लिखा है कि पत्नी ग्रहण करना बहुत ही समस्याएं उसमें सदा के लिए आती हैं, घर गृहस्थी में हमेशा प्रॉब्लम आते हैं, अप्स एंड डाउन्स आते हैं। इसलिए अगर कोई अपने इंद्रियों के ऊपर संयम रख सके और इस आश्रम में प्रवेश ही नहीं करे तो वो तो ठीक है, लेकिन एक बार अगर गृहस्थी होके और स्त्री को ग्रहण करे तो उसकी रक्षा करना उसका परम धर्म है, हर हाल में उसकी रक्षा करनी चाहिए। और वसुदेव इस राम कथा को ठीक तरह से जानते थे क्योंकि राम कथा के विषय में भागवत में लिखा है, सुखदेव महाराज परीक्षित को कहते हैं कि राम कथा को तो आप जानते हैं इसलिए मैं राम कथा बहुत संक्षेप में बताऊंगा। तो केवल पांच अध्यायों में रामायण नवम स्कंद श्रीमद् भागवत में राम कथा बताई गई है। तो वसुदेव की ये जानते थे कि जिस कन्या का मैंने पानी ग्रहण कर लिया, पानी ग्रहण किया है, पानी कहते हैं हाथ को, जिसका मैंने हाथ पकड़ लिया है, इसकी रक्षा करना मेरा परम धर्म है और इस वक्त इसकी रक्षा करनी मुझे चाहिए। तो बल से तो नहीं कर सकता हूं कंस से लड़कर, लेकिन बुद्धि का उपयोग करना चाहिए। तब वसुदेव के मन में विचार आया कि मैं कंस को कहूं कि तुम्हें भय देवकी से तो नहीं है, देवकी को तो अभी बचाना ही चाहिए, तुम्हें भय है इसके होने वाले पुत्रों से है ना। तुम्हारा भय कंस, हरे कृष्ण, तुम्हारा भय देवकी से नहीं है, तुमको भय इसके संतान से है ना। तो मन में वसुदेव कहता है मैं वचन दे देता हूं कि इसको छोड़ दो, इसके सारे संतान मैं तेरे को दे दूंगा। फिर वसुदेव के मन में आया कि अपने पुत्र कैसे मैं दे पाऊंगा, अपना पुत्र किसी को मारने के लिए देना इतना आसान काम तो नहीं है। फिर वसुदेव मन में सोचने लगा हो सकता है कि मेरे पुत्र पैदा हो उससे पहले कंस मर जाए, क्योंकि दुनिया में कोई कभी मर भी तो सकता है ना, और ये हो सकता है कि मेरे को पुत्र पैदा ही ना हो, और ये भी हो सकता है कि मेरा पुत्र जैसे आकाशवाणी कह रही है कंस को ही मार दे, तो इसलिए अभी कैसे भी देवकी की रक्षा करनी चाहिए। और वसुदेव ने कहा भोजराज सौम्य दीन वत्सला, जब दीन वत्सला शब्द कहा कंस ने, कंस को वसुदेव ने, तो सरस्वती कांपने लगी। दीन वत्सल कहते हैं, वैसे वत्स कहते हैं बछड़े को, जो इतना दयालु हो उसको दीन वत्सल कहते हैं। कंस दयालु तो नहीं है, ये तो आगे चल के 6 बच्चे मारेगा, तो इसको दीन वत्सल कैसे कह दिया। तो दीन वत्सल का दूसरा अर्थ निकाल के विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं, दीन वत्सल का अर्थ ये है कि गाय के छोटे बछड़े को भी गाय से अलग करके टैक्स में ले ले जबरदस्ती, उसको दीन वत्सल कहते हैं। कि गरीब से गाय का बछड़ा भी चोरी कर पकड़ के ले जाए, उस तो कंस ऐसा है कि इसके बच्चों को लेके मार देगा, इसका दूसरा अर्थ ये है। कि तुम्हें देवकी से तो डर नहीं है, तुम्हें डर इसकी संतानों से है, मैं तुम्हें वचन देता हूं। श्लोक ऐसा अद्भुत है कि मैं तुम्हें वचन देता हूं, इसके सारे बच्चे जिससे तुम्हें भय नहीं है वो दे दूंगा। संस्कृत भाषा में लिखा है इसके सारे बच्चे जिनसे तुम्हें भय नहीं है वो दे दूंगा, इसका अर्थ क्या है, जिससे तुम्हें भय है वो नहीं दूंगा। जिन बच्चों से तुम्हें डर है, जिन बच्चों से तुम्हें डर नहीं है वो सारे मैं तेरे को दे दूंगा। लेकिन कंस तो इस संस्कृत के अंतरंग भाषा को नहीं समझा और कहा कि ये बात ठीक है, मुझे इससे डर नहीं है, तुम लोग जाओ घर। देवकी वसुदेव अपने घर गए और फिर पहला कीर्तिमान नाम का बच्चा जन्म हुआ। और वसुदेव अपने वचन को पालन करने के लिए सोचने लगा। भागवत में लिखा है, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, संत कितना कष्ट उठा सकता है अपने वचन को सत्य करने के लिए, अपने बेटे को कंस के हाथों देने जा रहा है। तो साधु पुरुष अपने वचन की रक्षा के लिए कुछ भी सेक्रीफाइस कर सकता है। और फिर लिखा है, लेकिन जो दुष्ट व्यक्ति है वो कितना भी गलत काम करने में कभी नहीं पीछे हटता है, वो हमेशा बुरे से बुरा काम भी कर लेता है। कंस इस छोटे बच्चे को भी मार देगा, वो बुरा आदमी है, और वसुदेव साधु है, वो अपने वचन के सत्य के लिए अपने बच्चे को भी दे सकता है। और वसुदेव अपने आप को ऐसे अपने वचन की सत्यता के लिए कंस के पास बच्चा ले गए। कंस ने बच्चे को देखा, बोला इससे मुझे भय नहीं है, मुझे तो 8वें से भय है, इसको ले जाओ। अब तो देवता परेशान हो गए कि कंस दयालु हो गया तो भगवान के आने में देर हो जाएगी, हमारे काम में तो रुकावट पड़ जाएगी। तो देव ऋषि को कहा, नारद जी जरा जाओ तो समाचार कंस को दे दो। तो देव ऋषि वहां आके कहते हैं, भोजराज महाराज, कंस ने प्रणाम करके नारद का स्वागत किया। नारद ने कहा कि मैं अभी आते हुए स्वर्ग में देखा था कि सारे देवता यदुवंश में आपको मारने के लिए बहुत बड़ा वहां मीटिंग करके नीचे उतर के आ रहे हैं, और ये भी विष्णु जो है ना, ये इसका पता नहीं लगता है कि ये एक या 8वां कभी भी आ सकता है। और आकाशवाणी ने गर्भ कहा, न लड़का कहा न लड़की कहा। इसका कॉम्प्लिकेशन थी कि कौन बच्चा होगा, आठवां की बच्ची होगी ये मालूम नहीं है। और यहां कंस को नारद कहता है कि देखिए आप गिन के देख लीजिए, ये देखो ये चार उंगली गिनो, आठ कहां से शुरू है, अन्ना गिनो आठ, एक दो तीन को बोलो बोलो एक बोलो एक दो तीन चार पांच छह सात आठ हो गया ना, अब यहां से गिनना शुरू करो तो ये एक आठ हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। पता नहीं कहां से गिनती करता है विष्णु, मालूम थोड़ी आगे से करेगा कि पीछे से करेगा। ये पहला वाला हो गया तो अब कंस का हाँ विष्णु, और ये भी कहा कंस ने, कंस को नारद ने कि तुम्हें मालूम है तुम कालनेमी राक्षस है, थे पहले जन्म में विष्णु ने तुम्हें मारा था, तुम्हारा शत्रु है वो, तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा। अब कंस को आ गया अपना असुरी भाव और वसुदेव को बच्चे के साथ बुलाया, अभी घर भी नहीं पहुंचा था, और बच्चे को मारा और देवकी और वसुदेव को कारागार में बंद कर दिया, जेल में बंद कर दिया, और उसके सामने बच्चे को मारा। और फिर यहां लिखा है एक एक करके हर साल एक एक बच्चे का जन्म हुआ और छह बच्चों को कंस ने मारा। तब लिखा है छह बजे जब कंस के द्वारा मारे गए तो भगवान ने श्री कृष्ण ने क्या किया, भगवान अपि विश्व आत्मा विदित्वा कंसजम भयम यदुनाम निज नाथानाम योग मायाम समादिशा। भगवान जो विश्व आत्मा है सबका कल्याण करना चाहते हैं, सबका भला करना चाहते हैं, सबसे प्रेम करते हैं, लेकिन विशेष रूप से यदुनाथानाम, यदु वंश में तो उनको अवतार लेना है, यदु के तो वो नाथ हैं, उन्होंने देखा कि कंस के भय से यदुवंशी सारे भयभीत हो रहे हैं, और कंस ने सारे यदुवंशियों को अंध भोजक मधु सोरसेन इन सबको इतना सताया कि वो सब मथुरा छोड़ के अलग अलग राज्यों में जाके रहने लगे। देवकी को छोड़ के वसुदेव की रोहिणी आदि अन्य पत्नियां नंदगांव में महाराज नंद के पास रहने लगी गोकुल में, और कुछ पत्नियां छुप के रहने लगी यहां लिखा है। तो भगवान ने उनको भय से मुक्त करने के लिए, यदुओं को कंस के भय से मुक्त करने के लिए योग माया को बुलाया। भगवान श्री कृष्ण ने गोलोक में अपने धाम में योग माया को बुलाया, और योग माया जब आई तो भगवान ने उनको क्या कहने लगा, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं भगवान कृष्ण स्वयं भगवान, जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण गोकुल गोलोक निवासी है अपने गोकुल धाम में रहते हैं, गेव ऑर्डर टू योग माया हु इज द फिफ्थ ऑफ द नाइन स्पिरिचुअल एनर्जीज हेडेड बाय विमला। तो ये योग माया जिसको भगवान ने आदेश दिया, लिखा है आदेशात आदेश दिया, उसके लिए लिखा है कि जो नौ दुर्गा होती हैं उनमें से पांचवा नंबर ये भगवान की स्पिरिचुअल एनर्जी है, जिनका पहला विमला है, और वो नौ के नाम यहां लिखा है। शक्ति स्पोटेंसी लार्ड की कौन सी है, विमला उत्कर्षणी ज्ञान क्रिया योग माया प्रहवी सत्या ईशना और अनुग्रहा। ये नौ भगवान की आध्यात्मिक शक्ति है, उसमें से विमला। आपको एक हम भक्ति सिद्धांत सरस्वती का पहला नाम क्या था, विमल प्रसाद, तो ये विमला राधा रानी का नाम है जिसकी कृपा से भक्ति सिद्धांत सरस्वती का प्रकट हुआ था। तो विमल पहली है, और पांचवे नंबर की जो भगवान की शक्ति है उसका नाम है योग माया। तो नौ शक्तियों में पांचवे नंबर की शक्ति योग माया को भगवान ने बुलाया और कहा क्या, गच्छ देवी व्रजम भद्रे गोप गोभीर अलंकृतम रोहिणी वासुदेवस्य भार्या अस्ते नंद गोकुले अन्याश्च कंस संविघ्नः विवरेषु वसन्ति। हे देवी, हे योगमाया, भद्रे कल्याणी, तुम नंद गोकुल में जाओ, जहां गाय है, जहां गोप है, जहां बहुत सुंदर पहले से ही ब्रज भूमि है, वहां जाओ। वहां वसुदेव की एक पत्नी रोहिणी और दूसरी वसुदेव की पत्नियां वहां कंस के भय से चुपके रह रही हैं, उनके भय को जाकर नाश करो। तुम उधर जाओ। और फिर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं आगे, अब एक बात यहां लिखी है, विश्वनाथ चक्रवर्ती ने बहुत स्पष्ट लिखा है, देवकी के जब 6 पुत्र मारे गए तो वसुदेव ने रोहिणी को देखा कि गर्भवती है, इसलिए सीक्रेटली उसको नंद गोकुल में भेज दिया कंस के भय से। तो यहां शब्द है कहां छुपाते भेजा, जैसे लिटरली विवरेशु का मतलब है कि गुफाओं में भेज दिया, छुपा दिया। तो इसका मतलब रोहिणी आया जाया करती थी वसुदेव और देवकी के पास जब वो जेल में थे, और जब वो गर्भवती थी और जब 6 बच्चे मारे गए तो वसुदेव को भय लगा कि कहीं रोहिणी के पुत्र को न मार दे, तो अक्रूर के साथ रोहिणी को वसुदेव ने नंद गोकुल में भेज दिया। और नंद बाबा और वसुदेव आपस में कजन ब्रदर्स हैं, इनके पिताजी आपस में भाई हैं और इनका दादा एक ही है, पर्जन्य ना, पर्जन्य का पिता, तो एक पर्जन्य गोप, एक वसुदेव का पिता सूरसेन, ये दोनों, एक का जन्म हुआ क्षत्रिय मां से सूरसेन का और पर्जन्य का जन्म हुआ वैश्य माता से, गोप माता से। तो जो गोप माता से जन्म हुए पर्जन्य के 5 पुत्र हुए, नंद, उपनंद, सुनंद, नंद आदि, और वसुदेव आदि सूरसेन के पुत्र। तो ये दोनों हैं आपस में भाई, सिर्फ माताओं के अंतर से एक वैश्य है और एक शूद्र है और एक क्षत्रिय है। तो नंद बाबा के पास रोहिणी को भेजा गया है, तो वहां रोहिणी रह रही है और गर्भवती है, और रोहिणी इस वक्त 7वें महीना, रोहिणी को 7वां महीना था, 7th मंथ था रोहिणी के गर्भ का। अब आगे श्री कृष्ण भगवान गोलोक में, स्वयं भगवान श्री कृष्ण अब उसको कहते हैं 5 नंबर की भगवान की आध्यात्मिक शक्ति योग माया को, क्या कहते हैं, देवक्या जठरे गर्भम शेषाख्यम धाम मामकम ततः सनिक्षह रोहिणी उद्रे सनिवेशया। देवकी के गर्भ में, जठरे पेट में जो इस वक्त गर्भ है उसको शेष कहते हैं, वो शेष है, शेष आख्याम, शेष उसको कहा जाता है। और वो कौन है, धाम मामकम, वो मेरा अंश है, वो मेरा एक्सपेंशन है, मेरा फर्स्ट एक्सपेंशन है, माम धामकम वो मेरा एक्सपेंशन है। तत्संक्रीष्य रोहिण्याम, उसको वहां से आकर्षित करके, खेच करके रोहिणी के गर्भ में स्थापित करो। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर यहां लिखते हैं कि बलराम जी को शेष कहते हैं, और आगे लिखते हैं, यहां 2-3 बातों का समझाने का प्रयास किया है विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने। पहली बात यह कही कि 6 गर्भ कौन थे जो मारे गए देवकी के, और जब ये पता लगा कि ये 6 असुर थे, इनको कहते हैं षड गर्भासुर, तो जब असुर जिस गर्भ में आए उस गर्भ में बलराम जी और कृष्ण कैसे आए, तो ये षड गर्भासुर कौन थे, तो इसी का उत्तर देते हुए प्रभुपाद जी ने लिखा है भावार्थ में विश्वनाथ चक्रवर्ती को कोट करके, और श्री चैतन्य महाप्रभु ने एक ब्राह्मण को जो नवद्वीप से जगन्नाथपुरी में जाकर चैतन्य महाप्रभु को प्रार्थना करके कहने लगा कि मुझे आपको आपसे तो मैं पूर्ण रूप से प्रेम करता हूं, आपका भक्त हूं, आपको मानता हूं कि आप साक्षात भगवान श्री कृष्ण हैं, लेकिन ये जो नित्यानंद जी है ना, इसके ऊपर मुझे विश्वास नहीं आता है। ये कभी रेशमी कपड़े पहनता है साधु होकर, सन्यासी होकर, कभी पान चबाता है, कभी कैसे घूमता है, तो मुझे उसमें थोड़ा सा संदेह होता है। तो चैतन्य महाप्रभु ने एक कथा बताई, कहा कि किसी भी बड़े वैष्णव के ऊपर दोष देखने की प्रयास करने से आदमी बहुत संकट भोगना पड़ता है। नित्यानंद अगर कुछ भी करे, हाथ में शराब की बोतल लेके वैशा के गले में हाथ डाल के घूमे, तब भी मैं उसको प्रणाम करूंगा और मेरे लिए वो फिर भी पूजने हैं, क्योंकि वो भौतिक किसी चीज से आकर्षित नहीं होगा। और तब महाप्रभु ने कहा, ब्रह्मा जी जैसे महान व्यक्ति के ऊपर मरीची के 6 बच्चे देवता हंसे थे। ब्रह्मा जी की एक बेटी वाक थी, 4 कुमार ब्रह्मा के, नारद, सप्तऋषि, कर्दम ब्रह्मा की छाया से पैदा हुआ। इनके बीच में एक बेटी ब्रह्मा जी की वाक नाम की थी, और ब्रह्मा जी उसके पीछे कामातुर होके भागे। तो उस वक्त ऋषियों ने तो कहा कि जो पुत्र था पिताजी ये उचित नहीं है, लेकिन ये जो मरीचि के 6 बेटे थे ये हंसने लगे, तो ब्रह्मा जी ने उसको शराप दे दिया कि जाओ असुर बनो। महाप्रभु कहते हैं ऐसे महान व्यक्ति ब्रह्मा जैसे के ऊपर हंसी उड़ाना या उसके ऊपर संदेह करने से उनको शराप मिला, और वो 6 हिरण्यकश्यप के पोते के रूप में, उसके बेटे के रूप में 6 असुर वहां पैदा हुए, और उन्होंने तपस्या करना शुरू की। हिरण्यकश्यप ने उनको शराप दे दिया कि तुमको तुम्हारा बाप मारेगा, अपने पिता के द्वारा तुम्हारी हत्या होगी। तो वो 6 असुर कालनेमी कंस के रूप में प्रकट हुआ, कंस के अंश से कालनेमी प्रकट हुआ। कालनेमी उग्रसेन का बेटा तो नाम का है, असल में कालनेमी असुर का अंश है। कंस की पत्नी का नाम पद्मावती था, और उसका जो पेरेंट था, माता पिता का घर जो था विदर्भ देश में था, और पद्मावती विदर्भ देश में अपने माता पिता के घर में गई हुई थी, अपने सहेलियों के साथ श्रृंगार करके घूम रही थी। आकाश में जाते हुए कालनेमी ने उसको देखा और नीचे उग्रसेन का रूप धारण करके उतर आया, तो सहेलियों ने समझा पति आया है इसको लेने के लिए, तो पति के साथ भेज दिया। तब वो कालनेमी ने अपने अंश को पद्मावती में स्थापित किया, पद्मावती ने पहचाना ये उग्रसेन नहीं है, और बहुत उसको बुरा भला कहा, लेकिन कालनेमी ने भी बहुत उत्तर दिया। ये वार्तालाप बहुत लंबी है। अर्थात उसके बाद जब वापस आई उग्रसेन के यहां, तो उसका जन्म जब हुआ कंस का, तो कंस कालनेमी आत्म जो कहते हैं कंस को, कालनेमी का तन्य, कालनेमी तन्य मतलब कालनेमी के अंश से, उसमें कालनेमी है, और ये 6 बच्चे उसी के बेटे हैं, और उसी के हाथों इनको मरना है क्योंकि ये शराप है। तो कंस ने अपने ही 6 बेटों को मारा, और फिर विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद बहुत एक उदाहरण भक्तों को देते हैं कि मरीचि मन का रिप्रेजेंटेशन करता है, और मन के 6 दोष होते हैं, 6 विकार हैं मन के, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, लस्ट, एंगर, ग्रीड, एनवी, ईगो, फाल्स ईगो, ये सब मन के विकार हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर। महिम, हरे कृष्णा, जागो, समाधि में मत जाओ, बलराम जी हल से खींच लेगा। हाँ, एक असुर को बलराम जी ने मारा था, उसका नाम था बलवल, अलवल का बेटा था, इसलिए बलराम जी का एक नाम है बलवल हंत, बलवल हंता, बलवल को मारने वाला, बलवल अरी। तो बलबल नैम शरण्या में ऋषियों के यज्ञ को विध्वंस करता था। तो ऋषियों ने प्रार्थना की कि आप इस असुर का वध कीजिए। जब बलराम जी यात्रा में गए थे महाभारत के युद्ध के समय, तो असुर जब आकाश में आया तो ऊपर से यज्ञ के अंदर कचरा फेंकने लगा। तो बलराम जी ने अपने हल का आवाहन किया कि मेरा हल आओ, और जब हल आया उसको लंबा करके बलबल के गले में ऊपर डाला और खींच के उसको नीचे लाया, और दूसरे हाथ में मूसल से उसके सर के ऊपर धाम से मूसल मारा और बलबल का सर फूट गया। और रेवती, अभी आपको बताया था रेवती को, रेवत को तो कहा ब्रह्मा जी ने कि जाके बलराम से शादी कराओ। यहां मैं ब्रह्मा से ये गर्ग संहिता में ये एक प्रश्न उठा है कि भगवान श्री कृष्ण के तो 16,100 रानियां थी, हर एक से 10 पुत्र और एक पुत्री हुई, उन पुत्रों के कितने पुत्रे हुए। जो कृष्ण का वंश है उसको रेती के दाने तो गिन सकते हो सैंड के, लेकिन उसका वंश कितना बड़ा है ये गिनना तो मुश्किल है। लेकिन बलराम जी का एक भी संतान का वर्णन नहीं है, क्यों? ये प्रश्न पूछा गया है। तो उस प्रश्न के उत्तर में कहा गया है, हम जिस मनवंतर में अभी जी रहे हैं इस मनवंतर का नाम है विवस्वत मनवंतर। ये पंडित जी जो जब करते हैं संकल्प, विवस्वत मनवंतरे जम्बू द्वीपे, फिर कह दे भारत खंडे, तो ये इससे पहला जो मनवंतर था वो चक्षुष मनवंतर था। चक्षुष मनु था उसने, चक्षुष मनवंतर, चक्षुष मनु की एक बेटी थी ज्योतिर्मयी, ज्योतिष्ठा, उस बड़ी प्रकाशमान थी। उसने अपनी बेटी से पूछा कि आपका विवाह किससे करना है बेटी, तो बोला जो सबसे शक्तिशाली हो। तो चक्षुष मनु ने इंद्र से लेकर सब देवताओं को बुलाया, इंद्र का तुम सबसे शक्तिशाली हो, सच्चे बोलो, झूठ का भार धरती नहीं उठा सकती। इंद्र ने कहा नहीं, वायुदेव मुझसे शक्तिशाली है। वायुदेव को बुलाया, बोला तुम भी सत्य बोलो शक्तिशाली, बोला नहीं, ये पर्वत मुझसे शक्तिशाली है, मैं कितना भी हिलाता हूं हिलते नहीं। तो पर्वतों के राजाओं को बुला के बोला तो तुम आप शक्तिशाली, बोलो नहीं नहीं, ये धरती हमको धारण करती है, हमसे ज्यादा शक्तिशाली ये धरती है। तो मही को बुला के तो आप शक्ति, बोलो नहीं, वो अनंत शेष हमको धारण करता है तब हम अपनी जगह पे खड़ी है, अनंत देव शक्तिशाली है, तो अनंत देव से शादी करनी है, वही सबसे शक्तिशाली है। तो बलराम जी अनंत शेष बलराम जी का अंश है। तो ज्योतिष्ठा उसने बड़ी तपस्या की जाके, तो उस तपस्या के समय वो इतनी चमकने लगी कि उसकी चमक से सारे देवता आकर्षण होके वहां आ गए। और इंद्र कहता है तुम मुझसे शादी करो, वरुण कहता है मुझसे करो, अग्नि कहता है मुझसे, सब देवता उसको कहने के लिए हमारे साथ विवाह कर लो। उसको क्रोध आया और उठ के खड़ी होगी, और उसके क्रोध से त्रिभुवन कांपने लगा और देवता भयभीत होने लगे कि हमको क्षमा करो, पर हम जा रहे हैं, आप हमको शराप मत देना। लेकिन उसने सबको शराप दिया, हर एक देवता को शराप दिया, और वो शराप जो लिखे हुए है, इंद्र को कहा तुम्हारे को तो कसुर कभी जीत के जाएगा, तुमको जाके लंका के अंदर बांध के रखेगा। वो मेघनाथ उसको बांध के ले गया। तो ऐसे है कि एक देवता को एक एक शराप दिया, वो सब शराप सत्य लगेगा कि ये कौन कौन से शराप है। और अंत में इंद्र ने उठ के उसको कहा ठीक है, तुम भी इस जन्म में पुत्र का घर उत्सव तेरे घर में भी नहीं मनेगा, शराब दिया कि तेरे को बेटा नहीं होगा। वो ज्योतिषमती तपस्या कर रही थी, ब्रह्मा जी ने आके कहा कि बेटी मैं तुम्हारी तपस्या से संतुष्ट हो गया हूं, तुम वर मांगो। बोला मैं वर मांगती हूं कि मुझे अनंत देव से विवाह होना चाहिए मेरा। तो बोला अच्छी बात है, अनंत देव द्वापर युग में आएंगे तब विवाह होगा। बोला अभी तो सत्य युग द्वापर में कितना टाइम लगेगा, इतनी देर इंतजार नहीं करूंगी, नहीं तो मैं तुमको भी शराब दे दूंगी, जल्दी मेरा विवाह कराओ। तो ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है, इस वक्त रेवती तुम जाओ, ऐसे करो रेवत महाराज के वहां पुत्री के रूप में जन्म ले लो, और महाराज रेवत तुमको लेके ब्रह्मलोक में जाएंगे, तब तक त्रेता लोक और द्वापर युग बीत जाएगा, और तुमको जैसे नीचे लाएंगे तो तुम्हारा बलराम से विवाह हो जाएगा। तो ये कन्या रेवती के रूप में पैदा हुई, चाक्षुष मनु की बेटी। और बलराम जी को जब श्री कृष्ण ने कहा कि आप मेरे अग्रज के रूप में जाके प्रकट हो देवकी के गर्भ में, तो बलराम जी की अपनी जो कन्या है नागलक्ष्मी, वो कहने लगी पतिदेव मैं आपके बगैर यहां तो नहीं रह सकती, मैं तो आपके साथ चलूंगी। तो बलराम जी कहा आप चलिए, लेकिन ऐसे कीजिए वैसे आपके चलने के लिए इस वक्त आप ब्रह्मलोक चली जाइए, रेवती वहां खड़ी है, वो रेवती ब्रह्मा की आज्ञा से ले आएंगे, मेरे से विवाह करेंगे, आप उसके शरीर में प्रवेश करो। तो नाग लक्ष्मी रेवती के शरीर में प्रवेश किया, जो बलराम जी की नित्य प्रियसी है नाग लक्ष्मी, जैसे विष्णु की लक्ष्मी है ऐसे बलराम जी की नाग लक्ष्मी। तो उसने रेवती में प्रवेश किया और वो ज्योतिर्मती थी, वो रेवती के रूप में प्रकट हुई, तो उसको ये शराब था कि कोई संतान नहीं होगा। तो ये पूरा लंबा चौड़ा ऐसे कथा बलराम जी के प्रकट्य का है। तो यहां वो बलराम जी भगवान का अंश है, उसको देवी तुम क्या करो, जाके रोहिणी के गर्भ में स्थापित करो। तो यहां विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं कि बलराम जी का देवकी के गर्भ में आना, यहां शब्द क्या लिखा है, श्री कृष्ण कहते हैं मैंने बलराम को रिक्वेस्ट किया है कि आप जाकर देवकी के गर्भ में मेरे लिए आसन स्थापित करो जहां मेरे को आना है, और वो नित्य रोहिणी का पुत्र है। बलराम जी रोहिणी का नित्य संपुत्र है, उसको उसकी मां के उदर में स्थापित करो। तो यहां विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं कि बलराम जी देवकी के गर्भ में गए, वहां अनंत शेष को अपने अंश को छोड़ा, जो भगवान का बिस्तर है, शेष भगवान की सैया है, आसन है, उसको रोहिणी के गर्भ में, उसको देवकी के गर्भ में छोड़ा, स्थापित किया, और स्वयं बलराम जी को योग माया आकर्षण करके रोहिणी के गर्भ में ले गई। तो बलराम जी क्यों आए देवकी के गर्भ में, अपने अंश शेष को स्थापित करने। शेष क्या है, भगवान की सैया है, भगवान उसी आसन के ऊपर बैठते हैं, भगवान गर्भ में किसी के नहीं आते हैं, भगवान तो अपने आसन के साथ आए थे। हम तो कहते यहां कोई प्रवचन देता है तो भी आसन रखना पड़ता है, तो हरेक आदमी का अपना आसन होता है, तो भगवान का आसन शेष है, तो उसको इसलिए देवकी के गर्भ में आना आवश्यक था, और वहां गर्भ में तो आए, शेष को स्थापित किया, और बलराम जी स्वयं रोहिणी के गर्भ में परिवर्तित हो गए। अब अभी बताया था आपको कि रोहिणी सातवें मास गर्भ का रोहिणी का था, और उस वक्त योग माया ने, भगवान आगे योग माया को एक और आदेश देंगे कि इसके बाद तुम यशोदा के घर में मेरी छोटी बहन बन के प्रकट होना, मेरी अनुजा के रूप में तुम यशोदा के वहां पुत्री के रूप में प्रकट होना, और देवी ये काम तुम करो, मुश्किल नहीं है। देवी ने कहा बहुत मुश्किल है, बलराम को खींचना कोई आसान काम नहीं है। बलराम का एक नाम है हस्तनापुर, पूरी हस्तनापुर को हल से खींचकर गंगा में डाल रहा था। हस्तनापुर गंगा के किनारे पे है, और इंद्रप्रस्थ यमुना के किनारे पर है, दिल्ली इंद्रप्रस्थ है, और हस्तनापुर के नाम से अभी भी एक नगर है जो गंगा जी के किनारे के ऊपर है, और थोड़ा हस्तनापुर से थोड़ी दूरी के ऊपर सुखताल है, जहां परीक्षित महाराज गए थे भागवत सुनने के लिए। उससे थोड़ा आगे विदुर कुटीर है, जहां विदुर जाके गंगा के किनारे रहते थे वहां से आके। तो हस्तनापुर को बलराम जी ने अपना हल डाल के, और दुर्योधन, ये प्रश्न दुर्योधन पूछ रहा है, दुर्योधन कौन है, बलराम जी का शिष्य है, और बलराम जी ने जब कहा कि मेरे को श्री कृष्ण ने कहा है कि मैं अवतार लूंगा धरती के ऊपर जाकर, तो निवात कवचों, निवातक नवात कवच नाम के असुर हैं जिनको अर्जुन ने मारा था जब अर्जुन स्वर्ग में गया था, उनका जो लीडर है उसका नाम है कली। और वो कली बलराम जी को आके प्रार्थना करने लगा कि मेरे मालिक आप अवतार लेने जाते हैं तो मैं अकेला यहां कैसे रहूंगा। तो बलराम जी ने कहा तुम ऐसे करो, तुम कुरु वंश में धृतराष्ट्र के वहां दुर्योधन के रूप में प्रकट हो। तो ये कली नवात कवचों का जो मुख्य राजा था, जो बलराम जी का एक परिकर है, उसको कहा कि तुम धृतराष्ट्र के वहां दुर्योधन होके प्रकट हो, मैं तुम्हें गदा युद्ध सिखाऊंगा और तुम मेरे शिष्य रहोगे। तो ऐसे दुर्योधन का वर्णन यहां नवात कवचों के राजा कली के रूप में है जो बलराम जी के साथ प्रकट हुए हैं। इसलिए दुर्योधन गुरु बलराम जी का जो अष्टक है उसमें बलराम जी की जितने जितने कार्य हैं उन सब का वर्णन बड़ा अद्भुत रूप से किया है। यहां ज्योतिषमती की कथा हो गई, रेवती की बात हो गई। तो आप ऐसे इसको समझ लीजिए कि जब भगवान श्री कृष्ण ने बलराम जी को, यह थोड़ा सा गर्ग संहिता में अलग वर्णन है एक बात का, कौन सी बात का, ब्रह्मा जी पृथ्वी को, शंकर को, अन्य देवताओं के लोय के क्षीर सागर के तट पे जाकर प्रार्थना की, ऐसे भागवत में वर्णन है। क्षीर सागर के तट पे प्रार्थना की और ब्रह्मा के हृदय में भगवान ने संदेश भेजा। गर्ग संहिता लिखी है कि इन सब देवताओं को लेकर ब्रह्मा जी जहां भौतिक जगत का कवरिंग है और जहां वामन देव के अंगूठे से उसमें होल हुआ था, उस होल के अंदर से ब्रह्मा जी पृथ्वी देवताओं को लेकर ऊपर गए। तो ऊपर जैसे ही उस तरफ गए तो ब्रह्म द्रव्य गंगा, कि गंगा कहां से आई, ऊपर पानी था पर्दे के, जिसने वामन देव का चरण धोया तो उसका नाम गंगा हो गया, तो उसको ब्रह्म द्रव्य कहते हैं। उस ब्रह्म द्रव्य को देखा ब्रह्मा जी ने और उस ब्रह्म द्रव्य में मिलियंस ऑफ ब्रह्मांड, ये हमारा एक ब्रह्मांड है जैसे, ऐसे कोटि कोटि ब्रह्मांड, मीन्स मिलियंस ऑफ ब्रह्मांड, वो बाल की फुटबॉल की तरह उस ब्रह्म द्रव्य में ऐसे लुढ़क रहे थे। जैसे पानी के नदी में अंदर आप, जैसे यहां मैंने उदाहरण दिया था आपके, यहां नहाने जाते हैं ना तो जहां पानी गहरा होता है एक रस्सी में पीले पीले वो गोले बांधते हैं, तो ऐसे ये ब्रह्मांड उस गोले के रूप में वहां लटके हुए थे, इधर से उधर हो रहे थे, तो वो ब्रह्मांड उधर से। और उससे थोड़ा आगे गया, ब्रजा नदी को क्रॉस किया, ब्रजा नदी को क्रॉस किया तो सहस्र सूर्य के प्रकाश के समान उधर बहुत बड़ा प्रकाश दिखाई दिया, और उस प्रकाश से आगे जाके देखा तो बहुत सफेद अनंत शेष का दर्शन हुआ, जो बहुत बड़े विस्तार से ऐसे कुंडली मार के बैठा था, और अनंत शेष की गोद के अंदर गोलोक धाम है। वैसे गोलोक धाम बलराम जी का विस्तार है, वही गोलोक धाम बनाते हैं, तो अनंत की गोद में गोलोक धाम को देखा, और गोलोक धाम के बीच में भगवान श्री कृष्ण और राधा को विराजमान सिंहासन पे देखा और उनको प्रार्थना की कि आप कृपा करके हमारे पृथ्वी की इस प्रार्थना को सुनिए। तब उधर श्री कृष्ण भगवान ने ब्रह्मा जी को कहा कि निश्चित रूप से हम आएंगे, आप जाइए, पृथ्वी के दुख को हम जानते हैं। और तब बलराम जी को श्री कृष्ण ने कहा आप मुझसे पहले अग्रज जाके देवकी के गर्भ में स्थापित होइए और उसके बाद मैं आऊंगा। तो वहां से बलराम जब नीचे आए तो उन्होंने अपने रथ के ऊपर चढ़े, सम्मति उनके रथ का सारथी है, उनके रथ के ध्वज के ऊपर ताल वृक्ष का चिन्ह है, ताल वृक्ष अंकधारी ब्रह्मा जी। जैसे एक नाम अर्जुन का है कपिध्वज, कपिध्वज का मतलब जिसकी ध्वजा के ऊपर हनुमान का चित्र है उसको कपिध्वज बोलते हैं, तो ऐसे बलराम जी को बोलते हैं ताल अंक ध्वज, जिसकी ध्वजा के ऊपर, जैसे भगवान विष्णु का नाम है गरुड़ ध्वज, जिसके ध्वजा के ऊपर गरुड़ का चिन्ह है, ऐसे बलराम जी के जो रथ है उसका चिन्ह क्या है? ताल वृक्ष। ये ताल वृक्ष कौन से? जो ताल वृक्ष ताल वन में थे और जहां धेनु का असुर रहता था और बलराम जी ने जाके जिसको मारा था गधे को, वो ताल का फल होता है, तो ताल वृक्ष का अंक है। इसलिए जगन्नाथ की रथ यात्रा जब होती है, तीन रथ होते हैं। जगन्नाथ जी का सारथी कौन है? दारुक। कृष्ण का सारथी दारुक है। सुभद्रा के रथ को कौन चलाता है? अर्जुन, उसका पति सारथी के रूप में है। तो बलराम जी के रथ का सारथी कौन है? सम्मति। सम्मति बलराम जी का सारथी है, सम्मति। और तब बलराम जी ने सम्मति को बुलाया कि तुम देखो ये रथ तुम्हारा, जब युद्ध के लिए मुझे आवश्यकता होगी तब बुलाऊंगा। तब बलराम जी का हल आयुध सामने आके खड़ा हो गया का, और बलराम जी का मूसल आया सामने, तो उन दोनों को कहा कि अब मैं जा रहा हूं नीचे पृथ्वी के ऊपर अवतार लेके लेऊंगा जाके मैं ब्रजमंडल में, फिर मथुरा और द्वारका में लीला करूंगा, तीन स्थानों पे जब जब मुझे आपकी आवश्यकता होगी तब आप वहां उपस्थित होना जाना। और एक विशेष कवच है बलराम जी का, वो तीनों पुरुष के रूप में प्रकट हुए और उन सबको बलराम जी ने ये आदेश दिया। और उस वक्त देखते देखते बलराम जी के वहां रमा वैकुंठ से शेष आया। हर एक वैकुंठ में एक शेष रहता है, वो हजारों फनों वाले शेष वहां आने लगे। श्वेत द्वीप से एक शेष आया और देखते देखते सब बलराम के शरीर में समा गए। दे जस्ट मर्ज इन टू द बॉडी ऑफ बलराम। तो ऐसे जितने भी शेष जहां जहां वैकुंठ में थे वो सब आके बलराम में प्रवेश हुए और फिर बलराम जी रोहिणी के गर्भ में स्थित। तो अब देवी कहती है इसको मैं यहां से कैसे आकर्षण करूं? यहां ये दुर्योधन के गुरु प्राण विपाक नाम का, जिस जो ये कथा गर्ग संहिता में बताते हैं, वो तो पूजा कैसे की जाए बलराम जी, तो एक बलराम जी का स्तोत्र है। क्या कहते हैं? सत्वराजाम तु रामस्य देव व्यास कृतम शुभम। ये वेद व्यास के द्वारा इस स्तोत्र को रचा गया है। सर्व सिद्धि प्रदम रंजश्रणम केवलदम निर्णाम। ये आपको भगवत प्राप्ति कराएगा। क्या है ये स्तोत्र? तो बलराम जी की प्रार्थना है। देवादि देव भगवान कामपाल नमोस्तुते। बलराम जी को कामपाल कहते हैं। कामपाल का मतलब सारी इच्छाएं पूरी करने वाला। आध्यात्मिक इच्छाएं जो भगवत प्राप्ति की है वो केवल बलराम जी प्राप्त कर सकते हैं, करा सकते हैं। बलराम जी गुरु को शक्ति प्रदान करते हैं, गुरु तत्व है। गुरु जिस शक्ति से अपने शिष्य को आध्यात्मिक शिक्षा से भगवान के चरणों में भेजता है वो बल बलराम से आता है। तो उसको कहते काम पाल नमोस्तुते। नमो अनंताय शेषाय साक्षाद रामाय ते नमः। अब तीन नाम और बलराम जी के यहां आ गए, अनंत शेष साक्षात रामाय। आप राम हैं, आनंद देने वाले हैं, धरा धराय धरती को धारण करने वाले, पूर्णाय स्वधाम ने क्षीर पाणिये। अपने हाथ में हल उठाने वाले और धरती को धारण करने वाले पूर्ण भगवान, सहस्रशे नित्यम नमः संकर्षणाय। आपके सहस्र फण है और कैस कितनी शक्ति है बलराम जी की केवल शेष में। ये सारे ब्रह्मांड बलराम जी के एक एक फण के ऊपर, एक रुई के जितने, जैसे रुई से हम एक बाती बनाते हैं इसके समान उसके ऊपर। और ये जितने भी ब्रह्मांड में जो भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं गामाविश्यान च भूतानी धार्यामी अहम ओजसा, तो सारे ग्रहों के अंदर कौन प्रवेश होता है? बलराम जी का ओजसा प्रवेश होता है। श्री कृष्ण बलराम जी के ओजस के द्वारा, शक्ति के द्वारा इन सारे ग्रहों में प्रवेश होते हैं। जैसे धरती को धारण करते हैं ऐसे सारे ग्रह भी बलराम जी के ओज से, शक्ति से अपने अपने ऑर्बिट में मूव कर रहे हैं। तो यहां बलराम जी को आगे क्या कहते हैं? रेवती रमण त्वम वही बालदेवो अच्युत अग्रज, आप रेवती रमण है, आपकी रेवती आगे जाके पत्नी होगी, और उसके बाद आप बलदेव, आपका नाम बलदेव है आप, और आप अच्युत अग्रज है, अच्युत के बड़े भाई हैं, भगवान श्री कृष्ण के से पहले आए हैं। ऐसे रामायण में लिखा है कि लक्ष्मण छोटे भाई के जब रूप में आए तो एक दिन अगस्त ऋषि आए थे, और अगस्त ऋषि ने आकर कहा, सबने कहा कि बहुत अच्छा किया रावण का अंत किया, इतने बड़े राक्षस को मारा, राम जी आपने बहुत बड़ी विजय प्राप्त की, और सब ये प्रशंसा कर रहे थे। तो अगस्त मुनि ने उठ के कहा कि ये तो ठीक है, भगवान राम तो साक्षात भगवान है, उन्होंने सब ये कार्य किया, लेकिन इस पूरी लंका के ऊपर विजय तब तक नहीं हो सकती थी जब तक मेघनाथ नहीं मारा जाए। रावण को मेघनाथ के मरने से पहले कोई नहीं मार सकता था, और मेघनाथ को सवाय लक्ष्मण के ओर कोई नहीं मार सकता, केवल लक्ष्मण मेघनाथ को मार सकता था। इसलिए इस युद्ध के अंदर जो विजय है वो लक्ष्मण जी के कारण हुई है। वैसे राम जी तो इतने सोमय सुभा के हैं, जब आए अयोध्या में तो गुरुजनों को कहा कि ये सुग्रीव आदि, हनुमान आदि, ये अंगद आदि वानरों के सहायता से मैंने रावण के ऊपर विजय प्राप्त की। और सुग्रीव, हनुमान और अंगद को कहते हैं इन गुरु जी की कृपा से हमने विजय प्राप्त की, तो श्रेय दूसरों को देते हैं। आज अगस्त कृषि जी कहते हैं कि लक्ष्मण न होते उस युद्ध में तो मेघनाथ को कोई नहीं मार सकता था। क्यों? मेघनाथ को वो मार सकता है जिसने 14 साल नींद नहीं की हो, 14 साल कुछ खाया नहीं हो, और 14 साल जो निष्ठी ब्रह्मचारी रहा हो, इसलिए 14 साल का वनवास था, नहीं तो 13 भी हो सकता था, 15 भी हो सकता था, 12 भी हो सकता था, क्योंकि मेघनाथ की मृत्यु उसी के हाथों होगी जो 14 साल पूरा। इसलिए एक जगह दूसरे दिन की बात है, अयोध्या से निकले हैं वन के लिए राम जी, लक्ष्मण और सीता, और श्रृंगवेरपुर में निषादराज गुहा के वहां जब रुके हैं पेड़ के नीचे, तो नेम से लक्ष्मण भगवान के चरण दबाते हैं राम जी के, और जब समय होता है तो कहते हैं भैया अब जाके आराम करो। ये दिन श्रृंगेरपुर में, क्योंकि इससे अगली रात वो सारी रात सोए नहीं थे, जागे थे, क्योंकि अयोध्यावासी साथ आए थे, तो अब अयोध्यावासी जब सो गए तब वो उठ के वहां से चल दिए, तो सोए नहीं थे कोई भी। आज पहला दिन था राम जी ऐसे सोए, और ये लक्ष्मण को कहा नहीं कि भैया जाके सो। तो यहां लिखते हैं कभी आचार्य, क्या पैदल चल के आए थे राम जी, थक गए थे, आए तो रथ में थे, लेकिन क्या जर्नी से थक गए इसलिए आंख बंद हो गई? बोला नहीं, बोला नहीं, राम जी को थकावट नहीं हो सकती। उसका एक कारण तो रामायण वाल्मीकि में है कि जब विश्वामित्र राम लक्ष्मण को ले जाने लगे तो पहले पहले सरयू का आचमन करा के कहा कि आपको बला और अपला नाम की विद्या देता हूं अबला, और इस विद्या के बाद आपको कभी थकावट नहीं होगी, आपको हर प्रश्न का उत्तर अपने आप आने लगेगा, और युद्ध में कभी आप थकेंगे नहीं। ये तो वो दो विद्याएं पहले पहले वो मंत्र दिए थे राम जी को विश्वामित्र ने, और फिर सब अस्त्र शस्त्र जब दिए तारका के मारने के बाद, तो वो सारे अस्त्र पुरुष के रूप में आगे खड़े हुए हाथ जोड़े, राम ने सबको कहा मैं आपको स्वीकार करता हूं, अब आप जाइए, जब मुझे जरूरत होगी तब मैं आवाहन करूंगा, जैसे बलराम जी ने अभी कहा। तो वहां राम जी ने क्यों नहीं कहा कि भैया जाके सो जाओ, क्यों? राम जी हृदय में कह रहे थे आज से 14 साल तक लक्ष्मण को जागना है, अब इनका सोना बंद है, इसलिए आदेश नहीं दिया कि भैया जाके सो जाओ, कि अब तो लक्ष्मण को जागना है। फिर भी संसार की दृष्टि से अगस्त मुनि से राम जी ने कहा मैं लक्ष्मण को रोज फल देता था जो वन से हम लाते थे, सीता जी उसको जो भी काट के तैयार करती थी मैं लक्ष्मण को देता था, तो इसने खाया कैसे नहीं? बोला वो वापस वन को अर्पण कर देता था, कभी खाया नहीं। हम सबरी के फलों के समय देखते हैं राम जी ने खाया लेकिन लक्ष्मण ने नहीं खाया, उनको ऐसे लेके वन में फेंक दिया वापस, तो बोला वन को अर्पण कर दिया। और तब राम जी ने कहा कि नैष्ठी ब्रह्मचारी तो कभी स्त्री का मुंह नहीं देखता है, लेकिन मेरे साथ तो सीता थी और लक्ष्मण हमेशा हमारे साथ रहा, तो ये नैष्ठी की ब्रह्मचारी कैसे? तो अगस्त ने कहा कि आप देखो, लक्ष्मण ने कभी सीता जी का मुख नहीं देखा है, हमेशा चरण देखे। और ये किष्कंधा कांड में सिद्ध होता है, जब वो आभूषण सुग्रीव ने कहा कि ऊपर से जाते हुए किसी ने फेंके है, हो सकता है सीता के हो, तो राम ने जब पूछा लक्ष्मण से, तो लक्ष्मण ने कहा ये पांव की पायल तो मैं पहचानता हूँ सीता की है, लेकिन कानों के कुंडल मैं नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि कभी मैंने मुख देखा नहीं सीता का। तो ये तीन बातें, तब राम जी ने कहा अब इस बार भैया तुम बड़े भाई के रूप में आगे मुझसे जाओ। तो ये दो कारण बताए, और तीसरा कारण स्वयं लक्ष्मण ने कहा कि ऐसे ऐसे काम मुझे करने पड़े, छोटे भाई होने के कारण सीता को वाल्मीकि आश्रम में छोड़ के आना पड़ा, अग्नि का बहुत बड़ी चिखा बनानी पड़ी सीता को उसके अंदर प्रवेश होने के लिए, इस बार मैं बड़ा भाई बन के जाऊंगा, मैं ऐसे छोटा बन के चुप करके बैठने वाला नहीं हूँ। तो यहाँ उसका नाम है अच्युत अग्रज, अच्युत के बड़े भाई। हलायुध जिसका हथियार, जिसका वीपन हल है, प्रलंबघन प्रलंबासुर को मारने वाला, पाही माम पुरुषोत्तम, हमारी रक्षा करो बलराम, प्रलंबासुर को मारने वाले। कल हमने आपने बताया था, भक्ति विनोद ठाकुर ने शिक्षाष्टकम के सातवें श्लोक के भावार्थ में लिखा है कि बलराम जी ने जो जिन दो असुरों का वध किया था, एक धेनुकासुर, एक प्रलंबासुर ब्रज में, ये दो दोष होते हैं। जो धेनुकासुर है वो गधा है, गधे का मतलब अज्ञानी है, और सारा भार उठाता है कर्मों का, गधे की तरह भार उठाता है। भक्त को ये अज्ञानता और कर्म के भार को अपने प्रयास से अपने आप को मुक्त करना पड़ेगा। और प्रलंबासुर जो है काम का, क्रोध का, संसारी आकर्षण स्त्री पुरुष का, इसका प्रतीक है प्रलंबासुर, और ये दोष भी भक्त को अपने प्रयास से हटाने पड़ेंगे, तब भगवान की भक्ति में आगे बढ़ेगा। तो ये प्रलंबासुर का वध भगवान ने किया था, जो ग्वाल बाल के रूप में आया, एक पार्टी में खड़ा हो गया और बलराम जी को उठा के जा रहा था, बलराम जी ने उसको मारा था। बलाय बलभद्राय ताल अंकाय नमो नमः, बलराम बलभद्राय ताल अंकाय नाम है एक, जिसके जिसके ध्वजा के ऊपर अर्थ में ताल का अंक है। और फिर है नीलांबराय, आपके वस्त्र कैसे बलराम पहनते हैं, नीलांबर। भगवान शंकर, भगवान शिव, उनका इष्ट देव है संकर्षण, नीलांबर संकर्षण, ये भगवान शंकर जी का इष्ट देव है। और नारद जी और अंगिरा ऋषि ने चित्रकेतु को नीलांबर संकर्षण की उपासना करने के लिए कहा था, अहंकार का दमन करने के लिए संकर्षण है। अब देखो, ज्ञान पुस्तक से प्राप्त कर सकते हो, जो अहंकार है वो केवल गुरु के चरणों में अहंकार का दमन होता है, तो संकर्षण गुरु तत्व है, अहंकार को नाश करने के लिए है। तो नीलांबर का उपासना की थी चित्रकेतु ने, और 12 दिन में 13 दिन में विद्याधर बने थे, और तब शंकर भी नीलांबर के उपासक, इसलिए कहा दोनों आपस में समान मैत्री वाले थे। तो नीलांबर नीले वस्त्र बलराम जी पहनते, क्यों नीले वस्त्र पहनते हैं, क्योंकि श्री कृष्ण का रंग नीला है, वो अपने भाई को हर समय स्मरण रखने के लिए नीले वस्त्र पहनते हैं, जैसे राधा रानी साड़ी हमेशा नीली पहनती है, और कृष्ण पीले पहनते हैं, गोरे पहनते हैं, वो तो उसका है। तो यहां ये स्मरण करना जरूरी है कि जब योग माया ने बलराम जी को रोहिणी के उदर में ले जाके रखा, उस वक्त योग माया ने देवकी के ऊपर भी प्रभाव डाला, उसको पता नहीं लगा क्या हुआ, और रोहिणी के ऊपर भी प्रभाव डाला, रोहिणी देख रही है कि मेरा जो 7 महीने का गर्भ है वो गिर रहा है, तो योग माया ने कहा चिंता मत करो, मैं तुम्हारे उदर में बलभद्र को स्थापित कर रही हूं। और फिर 5 दिन के बाद उसके बलराम जी का प्रकट्य हुआ। यहां गर्ग संहिता में तो षष्ठी लिखा है, बुधवार लिखा है, कौन सा नक्षत्र है वो सारा लिखा है, और बलराम जी के प्रकट्य के समय नंद बाबा ने लाखों गाय ब्राह्मणों को दान दी और ब्राह्मणों को बुलाकर बहुत बड़ा स्वस्ति वाचन कराया, बहुत बड़ा उत्सव किया बलराम जी के प्रकट्य के ऊपर। और रोहिणी के यहाँ जब जन्म हुआ बलराम जी का, तो बहुत बड़ा नंद गांव में उत्सव हुआ, नंद बाबा ने बहुत गाय आदि दान दी और बलराम जी प्रकट तो हुए, लेकिन बलराम जी ने आंखें नहीं खोली और न ही मुख से कुछ खाने का भी अभ्यास किया कि प्रयास किया। क्यों? कि जब तक कृष्ण का प्रकट्य नहीं हुआ तब तक उन्होंने किसी और को नहीं देखा। और जैसे ही कृष्ण का प्रकट हुआ, छोड़ के गए वसुदेव जी और नंदनंदन कृष्ण प्रकट हुए, और उसके रोते ही, उसके उठते ही, उसके शरीर के सुगंध को सूंघ के बलराम जी ने पहले आंखें खोल के दर्शन कृष्ण कर दिए। और उसके बाद उसने बाल क्रियाएं सब अपनी शुरू की। तो ये बलराम जी, ऐसे राधा रानी का भी ऐसे वर्णन है, उन्होंने जब तक आंखें नहीं खोली जब तक कृष्ण का दर्शन नहीं किया। तो बलराम जी भी सेवक भगवान है। तो यहां आगे लिखा है, बलरामाय गौराय नीलांबराय गौराय, बलराम जी का रंग गोरा है। चेतन चरितमृत में लिखा है कृष्ण और बलराम में कोई भेद नहीं है, सिर्फ रंग का भेद है, एक सांवले हैं एक गोरे हैं, कपूर जैसे गोरे हैं या दूध जैसे गोरे हैं। एक बार 1972 में, 72 में अर्ध कुंभ मेले में प्रभुपाद जी गए थे प्रयागराज में, तो प्रभुपाद जी के एक शिष्य मधुद्वेष कहने लगे, बलराम और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है, सिर्फ रंग का अंतर है, एक गोरा है एक सांवला है। तो जमुना देवी प्रभुपाद की दूसरी शिष्य कहने लगी, नहीं नहीं एक और अंतर है। बोलो क्या अंतर है? बोला राधा रमन तो केवल कृष्ण है, बलराम राधा रमन तो नहीं हो सकते, तो ये तो बहुत बड़ा अंतर है। राधा का संग तो केवल कृष्ण कर सकते हैं, बलराम तो नहीं कर सकते। दोनों में बहुत हार्ड डिस्कशन होने लगा। तो तमाल कृष्ण महाराज ने जब ये सुना तो प्रभुपाद से जाकर पूछा, इसलिए प्रभुपाद वहां मधुवेश कह रहा है कि कृष्ण और बलराम में कोई अंतर नहीं है, केवल रंग का अंतर है, एक गोरा है एक सांवला है। प्रभुपाद ने कहा दैट इज राइट, सही है, चेतन चरित में लिखा है। फिर तमाल कृष्ण महाराज ने कहा लेकिन जमुना देवी कहती है नहीं नहीं एक और अंतर है कि राधा रमन तो केवल कृष्ण है, बलराम राधा रमन नहीं हो सकते। प्रभुपाद के दैट इज ऑल्सो राइट, ये भी सही है। अब तमाल कृष्ण बिवेल्डर हो गए, बोला दोनों एक दूसरे से भिन्न भिन्न कह रहे हैं, ये कैसे सही है? प्रभुपाद यू आर ऑल्सो राइट, आप भी ठीक है, आप भी सही कह रहे हैं। और फिर प्रभुपाद ने कहा नाउ यू डिसाइड। तो इसके ऊपर गिरिराज महाराज कह रहे थे कि प्रभुपाद के ये कहने से ये शिक्षा दी प्रभुपाद ने, एक सत्य कि परम सत्य को जानना पूर्ण रूप से हमारे बस की बात नहीं है, हर एक आदमी अंश मात्र जानता है, जो जहां से जितना देखता है उतना ही कह सकता है, पूर्ण रूप से कहना संभव नहीं है। एक हाथी को 6 अंधे बैठ के देखेंगे तो 6 ही अलग अलग बोलेंगे, कोई कहेगा कि ये दीवार जैसा है, कोई कहेगा कान को हाथ लगाएगा पंखे जैसा है, कोई पांव को पकड़ेगा बोले खंभे जैसा है, लेकिन न हाथी खंभा है न पूंछ को पकड़ेगा तो बोलेगा रस्सी है, लेकिन हर एक सच कह रहा है क्योंकि देख नहीं रहा है, जो कह रहा है वो सच है, लेकिन पूरा हाथी तो कुछ और है। तो परम सत्य को ऐसे समझना आसान नहीं है, और वो तो केवल बलराम जी की कृपा से जो भी थोड़ा बहुत समझ में आएगा तो आ सकता है। तो बलराम जी के इस स्तोत्र को आज पढ़ लेते हैं, बलराम पूर्णिमा भाई थोड़ा सा और भी है। नीलांबराय गोराय रोहिण्याय ते नमः, रोहिणी पुत्र है रोहिण्याय ते नमः, जैसे कौन्तेय अर्जुन को कहते हैं, वसुदेवाय कृष्ण को कहते हैं, तो ये है रोहिण्याय। बलाय बलभद्राय तालंकाय हो गया, धेनुकारी मुष्टिकारी, धेनुकासुर को मारने वाले, धेनुकासुर के शत्रु मुष्टिकारी, चारुण को कृष्ण ने मारा, मुष्टिक को बलराम जी ने मारा, मुष्टिकारी कूटारी बलवलंतक, एक कूट नाम के राक्षस को मारा था और एक बलवल को मारा था, तो ये उन राक्षसों का नाम है। रुक्मिणी, रुक्मी को मारा था, रुक्मणी के भाई रुक्मी को बलराम जी ने, ये द्वारका लीला में हम पढ़ते हैं, रुक्मी को बलराम जी ने मारा था, रुक्मणी के भाई को। बड़ा अद्भुत लीला है, जब कृष्ण रुक्मणी रुक्मी को मार रहे थे, बलराम कहते साले को थोड़ी मारते हैं, इसको छोड़ दीजिए, तो उसको केवल मूछ मूछ काट के छोड़ दिया, तो वो तो कभी गया नहीं अपने घर, अलग नगर बसा के बैठा। महाभारत में उसने युद्ध में भाग नहीं लिया, और जब प्रद्युम्न के बेटे का विवाह रुक्मी की बेटी से होने लगा तो बलराम जी वहां गए उस शादी में, तो वहां बलराम जी को कहा हमारे साथ आप ये चौपट खेलो। उस चौपट खेल में उन्होंने बलराम जी की हंसी उठाई उड़ाई और जूठ से जीतने लगे और कहे कि ये ग्वाला क्या खेलेगा। तब बलराम जी को क्रोध आया, उठा के मूसल रुक्मी को मार दिया। तो रुक्मी अरी, तो रुक्मी को मारने वाले रुक्मी, उसको उधर कहता है साले को मत करो, यहां मार दिया। रुक्मी अरी, कूप करण अरी, एक और राक्षस मारा कूप करण अरी, कुंभांडन अरी स्वतमे वही, एक कुंभांडम नाम का राक्षस मारा। कालिंद्री भेद नो अश्मी, कालिंद्री भेद नो अशी, आपने कालिंद्री का भेदन किया, ये तो राम घाट पे हल डाल के जमुना को खींचा, उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए, तो कालिंद्री भेदना भेदनो अशी तुम हस्तनापुर, हस्तनापुर कर्षक, हस्तनापुर पुरी को हल डाल के गंगा की तरफ खींच लिया। द्वेधारी, और द्विविध नाम, द्रिविड नाम के राक्षस को मारा था। ये द्रिविड सुग्रीव की सेना में राम के साथ लड़ने गया था और वहां लड़कियों को छेड़ रहा था, तो लक्ष्मण ने इसको डांटा था, तो अब ये अभी तक जीवित था और द्वापर युग में ये कंस और शिशुपाल और इनका साथी हो गया द्रिविड, और बलराम जी से तो शत्रु का उस समय की थी, तो एक जगह ये अपने बैठा हुआ था, बलराम जी वहां गए तो उसका बड़ा मजाक उड़ाया बलराम जी का, तो बलराम जी ने द्रिविड को मारा है द्वारका लीला में। तो द्वेविद अरि यादवेंद्रो, यदुवंशियों के आप महान पूजन हो यादवेंद्रो, ब्रजमंडल मंडनम, और ब्रजमंडल में आप मंडन हो, उसका बड़े सुंदरता का चिन्ह हो। कंस भ्रात्र प्रहंतासी, कंस को तो भगवान श्री कृष्ण ने मारा, लेकिन कंस के भाइयों को बलराम जी ने मारा, वो साथ ही गए थे ना। कंस भ्रत्र भ्रात्र प्रहंतसी तीर्थ यात्रा कर प्रभु, और फिर बलराम जी सारे तीर्थ यात्रा करने गए थे। नैमिषारण्य के बाद जहां जहां गए उन सब तीर्थों के नाम है, गंगा सागर तक गए थे, इस पूरे तीर्थों को। नैमिषारण्य में एक सूता रोम हर्षण को मारा था तिनके से, और फिर वहां बलवल को मारा, फिर वहां से आगे जाके बनारस से होते हुए त्रिवेणी संगम में गए, वहां से गया गए, गया से गंगा सागर गए, ये पूरा उसके भ्रमण जो तीर्थ यात्रा का है उसका वर्णन है। दुर्योधन गुरु, दुर्योधन के गुरु है, साक्षात पाही पाही प्रभु स्वतः, जय जय अच्युत देव परात पर स्वयं अनंत दिगंत गत श्रुतः, सुर मुनिर मुनिन्द्र फणिन्द्राय ते मूसलीने बलिने हलिने नमः, यह पठेत सततम् स्वत्तवनम् नरः सतु हरे परम पदम आवृजेत, जगति सर्वबलम् सर्वबलम् त्वरि मर्दनम् भवति सत्यधनम् स्वजनम् धनम्। ये बलराम जी का स्तोत्र है। देवदेव भगवान कामपाल आपको नमस्कार है, हे बलराम जी आप साक्षात अनंत और शेष जी हैं, आपको नमस्कार है, आप पृथ्वी को धारण करने वाले परिपूर्ण ब्रह्म स्वयं प्रकाशमान, हाथ में हल लिए हुए हजार मस्तकों से युक्त संकृष्ण हैं, आपको नित्य मेरी नमस्कार है। पुरुष श्रेष्ठ बलराम जी, आप भगवान अच्युत के बड़े भाई हैं, रेवती के स्वामी हैं, हल आपका शस्त्र है और आप प्रलम्बासुर का संहार करने वाले हैं। आप मेरी रक्षा करें। भगवान बलराम, बलभद्र और ताल ध्वज को मेरे बार बार नमस्कार है। आप गौरवर्ण है, नीलांबर धारण कर किए हुए हैं, रोहिणी के कुमार हैं, आपको नमस्कार। आप धेनुकासुर, मुष्टिकासुर, कूट बलवल, रुक्मी, कूपकर्ण और कुंभांडक के शत्रु और उनके संहारक हैं। आप कालिंदी का भेदन करने वाले, हस्तनापुर का आकर्षण करने वाले, द्विविध बानर का वध करने वाले, यादवों के राजा और ब्रज मंडल को सुशोभित करने वाले हैं। आपने कंस के भाइयों का वध किया। आप सबके स्वामी और तीर्थों में भ्रमण करने वाले हैं। आप दुर्योधन के साक्षात गुरु हैं। प्रभु मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। हे अच्युत आपकी जय हो, जय हो। हे परात्पर देव, आप स्वयं अनंत एवं दिशा विदिशाओं में कीर्तित हैं। आप देवता मुनि और सर्पों के स्वामियों में श्रेष्ठ हैं। हल तथा मूसल को धारण करने वाले भगवान बलराम जी को मेरी नमस्कार है। जो मनुष्य इस स्वत्वराज का निरंतर पाठ करता है वो श्री हरि के परम पद को प्राप्त करता है। जगत में वो शत्रु का शमन करने वाला संपूर्ण बलों से संपन्न हो जाता है और उसे धन तथा स्वजन प्रचुर रूप से प्राप्त रहते हैं। ये बलराम जी का स्तोत्र है। और भी बलराम जी के कवच है, बाण है आदि, इनका सबका पूजा का वर्णन है। अब बलराम जी के विषय में दो शब्द और कहते हैं, फिर तो दर्शन करेंगे बलराम के अभिषेक का। श्री प्रभुपाद जी ने एक जगह लिखा है कि उपनिषदों में ये आया है कि आत्मा बलहीने न, जिसके पास बल नहीं है वो परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकता है। न योग से, न तप से, न ज्ञान से, न ध्यान से, किसी से भी परमात्मा का प्राप्ति नहीं होता है, क्योंकि बलहीन प्राप्त। तो वहां प्रभुपाद लिखते हैं ये बल भौतिक बल की बात नहीं है, ये बलराम जी की कृपा की बात है। जिसके ऊपर बलराम जी की कृपा नहीं है, जो बलराम जी का शरण नहीं लेता है, वो कृष्ण प्रेम की प्राप्ति अथवा कृष्ण सेवा की प्राप्ति नहीं कर सकता है। और यही बात प्रभुपाद जी आगे कहते हैं, वही बलराम जी जब नित्यानंद के रूप में आए तो उन्हीं की कृपा से चेतना महाप्रभु की कृपा प्राप्त होती है, वो बड़े दयालु हैं। और आगे लिखा है कि बलराम जी के हाथ में हल है, श्री कृष्ण के हाथ में बांसुरी है सदा के लिए। इसका संकेत यह है कि बलराम जी हल के द्वारा जो भक्त का हृदय है उसके अंदर से सारे अनर्थों को खींच के निकालते हैं। इसलिए प्रार्थना करनी चाहिए कि बलराम जी आप अपने हल को बहुत जोर से हमारे हृदय में ऐसा घुसाइए और फिर खींच के अंदर से सारा ही कचरा बाहर निकाल दीजिए। जैसे हल चला के भूमि को तैयार करते हैं, तो हृदय भक्त के को सारे अनर्थों से निवृत्त करना बलराम जी के हल का कार्य है। जब वो हृदय तैयार हो जाता है तो भगवान की बांसुरी के आवाज से वो भक्त भगवान कृष्ण की सेवा में ऐसे भागता है जैसे गोपियां बांसुरी का आवाज सुन के भागती थी। तो जब तक हृदय तैयार नहीं होता है बलराम जी की कृपा से, तो आज हमको बलराम जी को प्रार्थना करना चाहिए हमारे अहंकार को छोटा करें। जब रेवती को उसका पिता रेवत लाया विवाह करने के लिए बलराम से, तो रेवती सत्ययुग की थी और रेवती वो कोई 15 फुट की लंबी थी और बलराम जी द्वापर को युग का था तो 8 फुट लंबा था। अब रेवती 15 फुट मानो और देव के और बलराम जी 8 फुट, तो ये शादी कैसे हो हा? तो बलराम जी ने अपने हल को लंबा करके रेवती की चुटिया में ऐसे डाल के ऐसे करके थोड़ा सा अपने से छोटा कर दिया। तो हमारा अहंकार बहुत बड़ा हो जाता है कि मैं बड़ा हूं, तो बलराम जी के हल को हमारी चुटिया में डाल के थोड़ा सा अहंकार को छोटा कर दे तो भगवान की सेवा में लग सकें, और अंदर से ये जो अनर्थ है उसको बलराम जी नाश करें, ये बलराम जी को आज हमको प्रार्थना करनी चाहिए। बलराम जी भगवान श्री कृष्ण के प्रथम विस्तार हैं, और बलराम जी पांच रूपों में कृष्ण की सेवा करते हैं, स्वयं रूप से कृष्ण की सेवा करते हैं और चार रूपों से सृष्टि को करते हैं। ये सृष्टि में जितने अवतार आते हैं सब बलराम जी के माध्यम से आते हैं। जो संकृष्ण है अनंत शेष के रूप से धरती को धारण करते हैं, संकृष्ण से तीन विष्णु निकलते हैं, और तीन विष्णु कारण दक्षा है, गर्भो दक्षा है और शिरो दक्षा है। ये सृष्टि करता है, सृष्टि का कार्य, सृष्टि का धारण का कार्य ये तो चार रूपों से बलराम जी करते हैं, और एक रूप से स्वयं वो भगवान श्री कृष्ण की सेवा करते हैं। अब हमारा धर्म है भगवान की सेवा करना, जीवेर रूप कृष्ण नित्य दास, हमारा धर्म है श्री कृष्ण की सेवा करना। लेकिन हमको भगवान की सेवा करना सिखाए कौन? तो भगवान बलराम को अवतार लेना पड़ता है सेवक भगवान के रूप में, भगवान की सेवा कैसे की जाए वो हमको सिखाता है। तो बलराम जी अपनी कृपा से गुरु के अंदर अपनी बल का आवेश करते हैं, और गुरु हमको सिखाता है जो हम रोज पढ़ते हैं, श्री विग्रह श्रृंगार नितन, श्री विग्रह श्रृंगार नितनाना, श्रृंगार मंदिर मार्जना, दो मंदिर का धोना, भगवान का श्रृंगार करना, ये सब शिक्षा गुरु देता है। ये गुरु तत्व जो है वो बलराम है। गुरु किसी आदमी का नाम नहीं है, गुरु किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, अथवा गुरु किसी देश का या किसी जाति का नहीं है, गुरु किसी रंग रूप का नहीं है। प्रभुपा जी से कहते गुरु इज वन, जिसके अंदर बलराम ने अपने बल का आवेश किया है, जो दूसरों को भगवान की सेवा में लगा सकता है वो गुरु है। तो गुरु तत्व है, जैसे 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 विष्णु तत्व है, शक्ति तत्व है, जो राधा रानी के जितने विस्तार हैं वो शक्ति तत्व है, ऐसे शिव तत्व है, ऐसे बलराम जी गुरु तत्व है। जो जो भी गुरु भगवान की सेवा में भक्तों को लगाते हैं उसके अंदर जो बल है वो बलराम जी से आता है। और बलराम जी की बहुत मधुर लीलाएं हैं, वृंदावन में ब्रज लीलाएं हैं, और फिर मथुरा में मथुरा लीलाएं हैं, बड़ी अद्भुत लीला है। कृष्ण जैसे मथुरा में गया है तब से बलराम जी के साथ में, तो जैसे मुष्टिक को मारा, फिर कंस के भाइयों को मारा, उसके बाद 17 बार जरासंध के साथ युद्ध किया, और दोनों भाइयों ने हर बार हल गले में डालकर पकड़ के जरासंध को पहली बार लाके कृष्ण को बोला इसके सर के ऊपर मूसल मारूं, तो कृष्ण का नहीं, हमारे मामा का ससुर है, इसको मत मारो। हाँ, ही इज द फादर इन लॉ ऑफ अवर मेटरनल अंकल कंसा। बलराम बोला कंस को मार दिया, मामा को मारा, पर मामा को ससुर को छोड़ दो, ऐसे क्यों? तो भगवान कहते हैं बलराम जी भैया दाऊ, कहां कहां जाके हम बदमाशों को ढूंढेंगे, असुरों को? ये जाएगा सब कठे करके फिर यहां लाएगा, हम घर बैठे हुए मारेंगे। तो 17 बार वो जगह जगह से अपने साथियों को पकड़ के लाया और 17 बार मारा, और 17 बार यही जवाब दिया, तो 18 बार वहां से भाग के निकल चले। तो जरासंध का मृत्यु तो बलराम के हाथों नहीं होना था, उसका मृत्यु तो भीम के हाथों होना था। तो भगवान तो सब कुछ जानते हैं, कब किसको क्या करना है। हम मूर्ख हैं जो नहीं समझते हैं, इसलिए समझते हैं कि भगवान ठीक नहीं करते हैं। एक बहुत बड़ा भगवान का प्रेमी भक्त था, और इतना प्रेमी भक्त था कि भगवान श्री कृष्ण को देखता कि सदा के लिए खड़ा होता है। तो एक दिन कहा कि भगवान आप थोड़ा खेल करके आओ, मैं आपकी जगह के खड़ा हो जाता हूं, आप थोड़ा घूम फिर के आओ, कब से यहां खड़े हो? तो भगवान ने उसकी बात मान ली, लेकिन कहा देखो मैं तुम्हारे कपड़े मेरे देता हूं, तुमको इधर खड़ा करता हूं, एक बात याद रखना, बोलना बिल्कुल मत, चुप रहना, कोई आए कुछ भी करे तुम बोलना मत। अब ये खड़ा हो गया, भगवान घूमने चले गए। एक आदमी आया और वो कहने लगा कि मेरा एक कांटेक्ट का मुझे टेंडर मिला है, मेरा पास हो जाए भगवान, आप मेरे ऊपर कृपा करो। 100 रुपया डब्बे में डाला और जो पर्स निकाला था वो पर्स गिर पड़ा नीचे और वो चला गया। दूसरी एक विचारा और भक्त आया का मेरी लड़की की कल शादी है भगवान, आप कहीं से कुछ व्यवस्था करो, मेरी लड़की की शादी हो, ऐसे प्रणाम किया तो वो पर्स देखा,
बोला भगवान ने देखो यही कितना कृपा की है, अभी सब कुछ मिल गया। वो तो उठा के घर गया शादी। अब एक और भक्त आया का भगवान आज मेरा पानी का जहाज एक दो महीने के लिए दूर जाने वाला है, आप कृपा करना कि मैं सुख से वापस यात्रा करके। वो प्रार्थना कर रहा था तब तक जिसका पर्स गिरा था वो वापस आ गया पुलिस को लेकर। उसने कहा मेरा यहाँ पर्स गिरा था, इसने उठाया, यही खड़ा है और कोई नहीं है, और उसको पकड़ लगी पुलिस ने। तो अब वो जो भगवान की जगह खड़ा था वो कह रहा था ये तो अनुस है, बोला इसने नहीं। इतनी देर में तो भगवान आ गए। भगवान ने आते ही कहा भाई सुनो भक्त तुमने कुछ कहा तो नहीं? बोला मैं चुप रहा लेकिन ये देख के मैं बोल यही तो तुमने गड़बड़ कर दी, तुम्हें पता नहीं कि कौन क्या कर रहा है, तुम तो जानते नहीं हो, मैं इसलिए चुप रहता हूँ। वो जो पहला आया था ठेकेदार वो बड़ा बदमाश था, उसके पैसे अच्छी सेवा में लगाने थे तो वो पैसे तो छोड़ के गया। बोला फिर वो तो ठीक है लेकिन ये तो बेचारा नाव में जा रहा था, इसको पकड़ के जेल में ले गए। बोला वो नाव उसकी डूबने वाली थी, वो मेरा भक्त था, आज गया होता तो नाव डूब जाती, इसलिए उसको जेल में डलवा दिया, वो बच गया। तुम्हें ये समझ में नहीं आएगा इसलिए तुम ये काम मत करो, चुप जाओ मेरी आरती करके घूमने जाओ, तुम यहाँ बैठोगे तो तुमको समझ में नहीं आएगा क्या हो रहा है। तो भगवान किसको क्या देता है, कैसे देता है, क्या लेता है, उसमें हमारा हित है। एक पुरानी कथा प्रभुपाद जी कभी बताते थे और सामान्य चलती है कि एक मंत्री का ये नेम था, राजा जब भी कोई कहता था बोला भगवान की इच्छा है जो होगा अच्छा ही होगा। तो एक दिन मंत्री की उंगली कट गई, राजा की उंगली कट गई। तो मंत्री ने बोला बहुत अच्छा है भगवान की इच्छा हो गया है। राजा ने बोला मेरी उंगली कटी और भगवान की इच्छा है, डालो इसको जेल में। तो जेल में डाल दिया बेचारे को। और शिकार के ऊपर राजा जब गया तो उसको पकड़ लिया जो ट्राइबल थे, उन्होंने उनको कोई बलि चढ़ानी थी तो राजा को ले जाके बलि के लिए धो के तैयार करके और देवी के आगे मारने लगे। तो किसी ने कहा इसकी उंगली कटी हुई है, कटे हुए की बलि नहीं चढ़ती है। तो बच गया, वापस आया तो बड़ा मंत्री ने ठीक कहा था, जो भगवान करता है अच्छा ही करता है, उंगली कटी तो मरने से बचा। तो जेल से बाहर निकाल के मंत्री से बोला तुम्हारी बात तो ठीक है, तुमने मुझे तो कहा था भगवान ने, लेकिन तुम जेल में गए इसमें क्या भगवान ने अच्छा किया? बोला ये अच्छा किया, मैं तुम्हारे साथ होता तो मेरे को बलि चढ़ा देते, तुम्हें छोड़ते तो मुझे बलि चढ़ा देते, जेल में डालने से मेरा रक्षा हो गई। तो भगवान जो करता है अच्छा करता है। तो बलराम जी अगर एक धक्का देते हैं हमको अंदर से कचरा निकालने के लिए तो हमारा अच्छा ही करते हैं, कभी तकलीफ होती है तो उसको स्वीकार करनी चाहिए। बलभद्र अनंत शेष की जय, रोहिणी नंदन की जय, रेवती रमन की जय, हलधर की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। बलराम पूर्णिमा महोत्सव की।